आप सुन रहे हैं लाल पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह है भाग 12, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते इंस्पेक्टर कुलदीप अपने गांव पहुंचता है और अपने भाई विशु से मिली जानकारी के आधार पर अपने पिता के पुराने सामानों में उसे लाल चांद के बारे में अहम जानकारी मिलती है। इसके बाद वो शहर की ओर रवाना होता है जहां उसे एसपी साहब से मुलाकात करनी है। अब आगे पुलिस सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में कुलदीप एसपी साहब को बता रहा है कि लोगों की गुमशुदगियां लाल चांद से जुड़ी हैं। आदित्य भी वहीं साथ है, लेकिन एसपी साहब कुलदीप की इस बात का मजाक उड़ाते हुए इसे सिरे से नकार देते हैं। कुलदीप अपनी बात रखता है, सर आप तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। इवन पिछली दोपहर तक तो मैं भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन सर जो एविडेंसेस मिले हैं वो सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एसपी साहब पूछते हैं, कौन से एविडेंसेस? बस एक पुरानी डायरी, एक अजीब सी कहानी, और कुछ? कुलदीप क्या हो गया है तुम्हें, कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस कहानी पर? कुलदीप कहता है, सर मैं मानता हूं कि यकीन करना मुश्किल है, पर सर हाल फिलहाल के केसेस में भी रेड मून का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। वो मिसिंग गर्ल की केस हिस्ट्री, अभिजीत की फोन रिकॉर्डिंग, उस व्लॉगर का वीडियो और पेंटर कृपाशंकर भट्टाचार्य की अदबनी पेंटिंग, सभी में रेड मून है। कुलदीप अपनी बात पूरी कर रुक जाता है। एसपी साहब ने आंखें बंद कर रखी हैं। कुलदीप उनके जवाब का इंतजार कर रहा है। एसपी साहब बोलना शुरू करते हैं, कुलदीप मास हिस्टीरिया के बारे में सुना है? ढेर सारे लोग एक अजीब सी बात में ट्रस्ट करने लगते हैं, भले उस बात का कोई बेस ना हो। मंकी मैन के बारे में सुना है या चोटी कटवा गिरोह? इन केसेस में अफवाह की शुरुआत हमेशा किसी एक जगह से हुई और उसके बाद एक जैसे अजीबोगरीब केसेस की सीक्वेंस शुरू हो जाती है, लेकिन एंड में कुछ नहीं निकलता क्योंकि असल में कुछ था ही नहीं। कुलदीप सिर झुकाकर एसपी साहब की बात को सुन रहा है। बीच में वो आदित्य की तरफ भी देखता है। दोनों को यह बात समझ में आ चुकी है कि एसपी साहब कुलदीप की बात पर यकीन नहीं करने वाले हैं। तभी एसपी साहब कुलदीप को टोकते हैं, कुलदीप क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुलदीप थोड़ा सकपकाता है और कहता है, नो सर कुछ नहीं। एसपी साहब उसकी तरफ गौर से देखते हैं और कहते हैं, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। कुलदीप जवाब देता है, हां सर कल सो नहीं पाया था। एसपी साहब इसी बात को आधार बनाकर आगे कहते हैं, लगता है तुम काफी परेशान चल रहे हो उस मामले में। नो सर आई एम फाइन, इट्स पार्ट ऑफ जॉब। नो कुलदीप, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में अक्सर ऐसा होता है, फिर तुम अपने ब्रदर को लेकर भी काफी डिस्टर्ब हो। एसपी साहब कुलदीप की तरफ देखते हैं। कुलदीप सिर नीचा किए हुए उनकी बात सुन रहा है। सो तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और हालात के मद्देनजर लाल चांद की कहानी या कहूं र्यूमर पर यकीन करने लगे हो। कुलदीप एक झटके से सामने देखता है और बोल पड़ता है, नो सर। लेकिन एसपी साहब उसकी बात काटते हुए आगे बोलते हैं, कुलदीप मुझे लग रहा है कि यह केस तुम्हें पर्सनली डिस्टर्ब कर रहा है और इसी वजह से अब से तुम इस केस पर काम नहीं कर रहे हो। कुलदीप को एक शॉक लगता है, वो बोलने की कोशिश करता है, सर। लेकिन एसपी साहब उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं देते हुए आगे बोलते हैं, अब तक की सारी रिपोर्ट्स तुम जो टीम्स मैंने असाइन की हैं उनसे शेयर करोगे, और एक बात और, ये रेड मून वाली बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। कुलदीप अवाक सा एसपी साहब का मुंह देखता रह जाता है। एसपी साहब उस पर ध्यान दिए बगैर उसे कहते हैं, यू मे गो नाउ। कुलदीप वहां से उठता है। आदित्य की नजरें एक बार कुलदीप से टकराती हैं, लेकिन आदित्य ही उससे नजरें चुरा लेता है। कुलदीप केबिन से बाहर निकल जाता है। देर रात का वक्त है। कुलदीप अपने घर पर अपने पिता के कागजों में उलझा है। उसकी टेबल पर काफी सारे कागज बिखरे पड़े हैं और कमरे की एक दीवार पर लगे एक बड़े से व्हाइट बोर्ड पर काफी सारे नाम, जगहों के नाम, तारीखें वगैरह लिखे हैं। उनमें से कुछ नामों, तारीखों, जगहों पर उसने रेड मार्कर से सर्कल बना रखे हैं। दूसरी तरफ उसने पूरी दीवार पर ही हाल फिलहाल के सारे गुमशुदगी के मामलों की जानकारियां लिख रखी हैं। असल में गांव से मिली जानकारी के आधार पर वो मौजूदा वक्त की घटनाओं के बीच सही कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पूरे कमरे में कागज ही कागज फैले हैं। कुलदीप फर्श पर बैठा हुआ पापा की डायरी और दूसरे कागजों से मिली जानकारी के आधार पर कुछ कैलकुलेट कर रहा है। नक्शे, कैलेंडर, हिंदी पंचांग वगैरह जमीन पर बिखरे पड़े हैं। उसके चेहरे से लग रहा है कि वो किसी पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान दिखाई देती है और इस मुस्कान के साथ ही उसके चेहरे पर एक यकीन झलकने लगता है। वो अपने हाथ में कागज लिए कमरे के उस दीवार के सामने जाता है जहां पर उसने मौजूदा वक्त के सारे मिसिंग केसेस की डिटेल लिख रखी है। वो एक एक कर सारे मामलों के साथ अपने हाथ के कागज में लिखी जानकारी को क्रॉस चेक करता है। एक एक कर वो सारे मामलों को चेक कर चुका है। उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में इतना सुकून उसे कभी नहीं मिला होगा। रात के 11 बज चुके हैं। कुलदीप के घर की घंटी बजती है। इस वक्त कौन होगा, यही सोचता हुआ कुलदीप बाहर आकर आवाज देता है। कौन? बाहर से इंस्पेक्टर आदित्य की आवाज आती है। बॉस, मैं हूं आदित्य। कुलदीप दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही आदित्य बोल पड़ता है, बॉस कितने फोन किए मैंने, फोन तो उठा लिया करो। ओह, एक्चुअली मेरा फोन शायद साइलेंट मोड पर था। दोनों बात करते हुए अंदर आ जाते हैं। आदित्य कहता है, एसपी साहब ने ये ठीक नहीं किया। कुलदीप हंसते हुए जवाब देता है, मुझे पता था, हमने भी तो शुरू में यकीन नहीं किया था इस बात पर। आदित्य सहानुभूति जताते हुए कहता है, लेकिन उनको आपसे केस वापस नहीं लेना चाहिए था। कुलदीप जवाब देता है, भले ही मुझे केस से हटा दिया गया हो लेकिन मैं अब इस केस का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। बात करते हुए दोनों उस कमरे में आ चुके हैं जहां थोड़ी देर पहले कुलदीप बैठा था। वहां का हाल देखते ही आदित्य चौंक पड़ता है, बॉस ये क्या है? कुलदीप उसे पूरी बात समझाता है, आदित्य जितने भी केस हुए हैं उनसे लाल चांद का सीधा कनेक्शन है। और मैं बताऊं, डिपार्टमेंट ने यह केस मुझे ऐसे ही नहीं दिया है, इस केस को मेरे पास आना ही था। 20 साल पहले मेरे पापा ने लालचांद के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि ये लालचांद आसमान में कुछ खास स्टार्स की पोजीशन या कहें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में दिखाई देता है और यह स्थिति हर 20 साल में एक बार आती है। जो कोई इसे अच्छी तरह देख लेता है उसके साथ वही होता है जो अभिजीत के साथ हुआ, कृपा शंकर भट्टाचार्य के साथ हुआ या उस व्लॉगर के साथ हुआ। और कुलदीप बोलते बोलते रुक जाता है, फिर कहता है, मुझे तो लगता है मेरे पापा के साथ भी यही सब हुआ था। आदित्य हैरत में बोलता है, आखिर आपने कनेक्शन ढूंढ लिया? कुलदीप आगे कहता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अगर हर कोई लालचांद को देखने के बाद गायब हो जाता है तो विशु के साथ क्या हुआ था? 20 साल से उसकी दिमागी हालत बिगड़ी हुई थी और जब 20 साल बाद वापस से लालचांद दिखना शुरू हुआ तो वो एकदम ठीक हो गया। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो 20 साल से पागलों की जिंदगी जी रहा था। मुझे पक्का यकीन है कि उसकी जो हालत हुई ना उसका लालचांद से जरूर कोई कनेक्शन है। बोलते बोलते कुलदीप की आवाज में दृढ़ता आ जाती है, चाहे जो हो जाए मैं इस लालचांद वाले मामले का पर्दाफाश करके रहूंगा। आदित्य उसे टोकता है, लेकिन कुलदीप बॉस एसपी साहब ने तो केस आपसे ले लिया है। मैं तो कहता हूं एक बार आप ये पूरी चीजें उनको तसल्ली से समझाइए। कुलदीप हंसते हुए जवाब देता है, नहीं आदित्य ये बात इतनी आसानी से एसपी साहब के समझ नहीं आएगी। आदित्य बीच में ही टोकता है, एक बार फिर से कोशिश करके तो देखें, इस बार हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। कुलदीप जवाब देता है, आदित्य हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ये पूरी घटनाएं पूर्णिमा की रात के आसपास के कुछ दिनों में होती है, इसका मतलब हमारे पास एक दो रातों का वक्त है। मैं फिर से 20 सालों का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे इस केस को सॉल्व करना ही है। आदित्य जिज्ञासा जाहिर करता है, मगर कैसे? वो मैं सोच लूंगा, इस चीज की वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। बचपन से लेकर आज तक मैंने रोज इस चीज को भोगा है। मेरे भाई की जो हालत हुई जिंदगी के 20 साल वो पागलों की तरह रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं ऑफिशियली इस केस पर काम करूं या ना करूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस केस को सॉल्व करके रहूंगा। कुलदीप के चुप होने के बाद वहां सन्नाटा छा जाता है। आदित्य को कुलदीप की बातों में दृढ़ता नजर आ रही थी, लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। बॉस, आप जज्बाती हो रहे हो, और इतना कुछ जानने के बाद मुझे भी लग रहा है कि यह मामला कितना खतरनाक है। कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता हूं। अभी मेरा पर्सनल मैटर हो चुका है। आदित्य को समझ आ चुका था कि कुलदीप अब वाकई में पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए वो उसे कहता है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं इस केस पर अभी भी काम कर रहा हूं, कोई काम की लीड मिलेगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा। कुलदीप उसे देखकर मुस्कुराता है। आदित्य वहां से चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद कुलदीप वापस से सोचने लगता है। पापा की बताई कैलकुलेशंस पिछले सारे केसेस पर फिट साबित हुई है। पिछली सभी तारीखों पर जब वो लोग गायब हुए, उस वक्त उस जगह के नक्षत्रों की स्थिति पापा की कैलकुलेशन से मैच होती है। अगर किसी तरह पता लग जाए कि अगली बार ये लाल चांद कब दिखाई देगा, तो शायद कुछ किया जा सकता है। आज रात? क्या आज रात ये लाल चांद दिखाई दे चुका है या दिखाई देने वाला है? कुलदीप वापस से फर्श पर बैठकर उस दिन की तारीख को पंचांग और नक्शे के हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू करता है। कुछ ही मिनटों में उसे पता लग जाता है कि आज रात को कुछ देर बाद लाल चांद फिर से दिखाई देने वाला है। आधी रात का वक्त है। कुलदीप अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर से बाहर पहाड़ की तरफ जा रहा है। करीब 12:30 बजे वो पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंच चुका है, जहां उसे अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से लाल चांद दिखाई देने वाला है। कुलदीप के शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही है। वो अपने आप को बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा है। एक बारगी वो सोचता है कि वो आदित्य से इस बारे में बात करे। वो उसे कॉल करने ही वाला है, लेकिन कुछ सोचकर फोन को वापस अपनी जेब में रख लेता है। वो चांद की तरफ देखता है। चांद अभी एकदम सफेद चमकीला दिखाई दे रहा है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से रात 1 बजे के बाद लाल चांद दिखना चाहिए। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। आज कुलदीप को बड़े अजीब से ख्याल आ रहे हैं। रात की चांदनी में सारा नजारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। वो वापस से घड़ी की तरफ देखता है, लेकिन आज लग रहा है कि वक्त भी धीरे धीरे चल रहा है। होता ही है, इंतजार के लम्हे बड़े धीमे बीतते हैं। अभी भी 1:05 बाकी हैं। तभी उसे अपने हाथ पर पानी की एक बूंद महसूस होती है। वो ध्यान नहीं देता, उसे लगता है कि यह उसका भ्रम है। लेकिन एक के बाद दूसरी, तीसरी और फिर लगातार बूंदें गिरने लग जाती हैं। हल्की बारिश शुरू हो गई है और इसी के साथ आसमान में बादल छा गए हैं। वो चांद देखने का मौका मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन बादलों में चांद दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो एक पेड़ की ओट में खड़ा हो जाता है। करीब 15 बरसकर बारिश रुक जाती है, लेकिन आसमान में घने बादल छाए हैं। कुलदीप बेसब्री से बादलों के छटने का इंतजार कर रहा है। करीब 1:30 आसमान साफ हो जाता है। कुलदीप डरते डरते चांद की तरफ देखता है, लेकिन चांद अभी भी सफेद और चमकीला है। वो थोड़ी देर एकटक चांद को देखता रहता है, लेकिन चांद वैसा ही है जैसा हमेशा होता है। कुलदीप काफी देर तक इंतजार करता है। उसे हताशा होने लगती है। वो अपनी जेब में से कैलकुलेशन वाला कागज निकालकर चेक करता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, लेकिन उसे कोई गलती पकड़ नहीं आती है। कुलदीप पिछली कुछ रातों से ढंग से सो नहीं पाया था, लेकिन उस पर नींद का कोई नामो निशान नहीं है। वो काफी देर तक यूं ही इंतजार करता रहता है। रात के 3 बज चुके हैं। अब उसे लग जाता है कि शायद कैलकुलेशन में कोई गलती रह गई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाल चांद बादलों की वजह से उसे दिखाई ना दिया हो। इसी वजह से हताश होकर वो वापस अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। कुलदीप अपनी मोटरसाइकिल पर थोड़ा आगे गया ही था कि रास्ते में अचानक से एक आदमी बीच सड़क पर आ जाता है। अपने ख्यालों में खोए कुलदीप की मोटरसाइकिल उससे टकराते टकराते बसती है। कुलदीप मोटरसाइकिल रोककर गुस्से से चिल्लाता है, पागल हो गया है क्या? तभी साइड से एक और आदमी निकलकर वहां आता है। कुलदीप को सारा माजरा समझ आ जाता है। सुनसान सड़क पर इन लोगों ने उसे लूटने की नीयत से उसे रुकवाया है। एक बदमाश अपने पास से चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे धमकाता है, चल बे, अपना मोबाइल और पर्स निकालकर हमारे वाले कर दे। चांद की चांदनी में कुलदीप उन लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करता है। वो बदमाश फिर से चिल्लाता है,
सुनाई नहीं देता क्या, चुपचाप अपना पर्स निकाल।
लेकिन कुलदीप बड़ी शांति से अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। असल में एक तो वो मार्शल आर्ट का अच्छा खिलाड़ी है और दूसरा इन बदमाशों की बॉडी लैंग्वेज से पता लग गया है और दूसरा इन बदमाशों की बॉडी लैंग्वेज से लग गया है कि जितना दुस्साहस ये दिखा रहे हैं उसके लायक ये है नहीं। दूसरा बदमाश चिल्लाता है,
क्या कर रहा है रे?
लेकिन कुलदीप उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ लगा देता है और उसकी बाह मरोड़ देता है। दूसरा बदमाश उसकी तरफ चाकू लेकर झपटता है। कुलदीप उसका वार बचाता है और पलटकर हमला कर देता है। महज कुछ ही सेकंड में वो दोनों बदमाश जमीन पर पड़े कराह रहे हैं। कुलदीप वहीं पड़े उन दोनों लोगों को देखकर सामने देखता है। पहाड़ की इस ऊंचाई से उसे सामने चांद दिखाई देता है, लेकिन यह चांद सफेद नहीं, लाल रंग का है। कुलदीप की आंखें आश्चर्य के साथ फैल जाती है। उसे अजीब सा एहसास होता है, बड़ी शिद्दत से वो जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो उसके सामने थी। लेकिन कुलदीप ये नहीं समझ पाता कि उसे आगे क्या करना है। वो बस लाल चांद को निहारने लग जाता है। लाल चांद, एकदम खून जैसे लाल रंग का चांद। कुलदीप लाल चांद के सम्मोहन में खो सजाता है। वो ये भी भूल जाता है कि उसकी जान को इन दो लोगों से भी खतरा है। धीरे धीरे कुलदीप को लगता है कि आसमान में कुछ है जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो अपने होशो हवास खोने लगता है। वो अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो भी चीज है, इस चीज के सामने कुलदीप की हालत ऐसी हो गई है जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। और तभी उसे महसूस होता है कि उसका अस्तित्व मिट रहा है, शायद वो भी गायब होने वाला है। तेजी से कुछ दृश्य, कुछ चित्र उसकी आंखों के सामने उभरते हैं। बीते समय में घटी घटनाओं की फिल्म उसकी आंखों के सामने तैरने लग गई है। इन चित्रों, इन दृश्यों में से वो कुछ चेहरों को पहचान भी पा रहा है। वो चेहरे जो लाल चांद का शिकार बने हैं, अभिजीत, कृपाशंकर भट्टाचार्य, व्लॉगर रणवीर और भी काफी सारे चेहरे, कई ऐसे चेहरे जिनको वो जानता भी नहीं है। जैसे जैसे ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, कुलदीप का अपने दिमाग और अपने शरीर पर से कंट्रोल खोता जा रहा है। उसे अपने पापा और उसका भाई विश्व भी दिखाई देते हैं। और आखिर में एक ऐसा लम्हा आता है जब कुलदीप स्वीकार कर लेता है कि वो इस ताकत जो लाल चांद के पीछे है उसके सामने कुछ नहीं है। वो आत्मसमर्पण कर देता है। उसे पता है कि वो भी बस इन्हीं चेहरों, इन्हीं घटनाओं, इन्हीं दृश्यों के बीच कहीं खोने वाला है, यानी इस दुनिया से गायब होने वाला है। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जानने के लिए सुनते रहिए लाल पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 12, लेखन और आवाज दीपक मिड़तवाल।